ओम शांति। आज की मुरली सभी को याद होगी, याद है? करेंगे इस पर पुरुषार्थ। कोई सबसे सुंदर बात सुना दो। हरगोविंद महाकाल तो श्री बाबा है, हैं? मास्टर महाकाल। और ये किस संदर्भ में कहे? जब विनाश होगा तो जो आत्माएं अकाल तख्त नसीन रहकर महाकाल के साथ मास्टर महाकाल स्थिति में स्थित होंगी वो सुरक्षित होगी, बहुत फायदा होगा उन्हें। विनाश काल का बाबा एक पूरा चित्र खींच रहे थे। मुझे याद है 75 में बाबा ने कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि विनाश नहीं होगा। ऐसी बातें कहते थे बाबा कि सबको लगता था बस लास्ट ईयर आ गया है, अब घर चलना है। तो उसी की मुरली थी ये। जब विनाश की विकराल परिस्थितियां होंगी, बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के, विनाश की विकराल परिस्थितियों में जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति वाले होंगे क्या होगा, बोलो आगे। सबसे सुंदर बात थी आज की मुरली की है। विनाश की विकराल परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वालों को उमंग उत्साह दिलाने वाली होंगी और उन विकराल परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले सहज पार कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर बात थी। प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार एक साथ वार करेंगे। प्रकृति के पांचों तत्व, तेज बारिश हो रही हो, बहुत तेज, साथ में तेज तूफान भी चल रहा हो, घर में अग्नि कैसे वार करेगी? घर में जो खाने बनाने की अग्नि वो भी खत्म हो गई हो, गैस सिलेंडर खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, क्या होगा उस समय? ऐसी भयानक परिस्थितियों से हमें पार होना पड़ेगा। तो सभी क्या अभ्यास करेंगे? और कोई बात है? हाँ, साधन भी समस्या बन जाएंगे। हम सबको याद रखना है, अंत में विनाश काल में हर आत्मा, हर व्यक्ति निराधार हो जाएगा। सबको अकेला होना पड़ेगा एक बार अपने को देखने के लिए, हम कहाँ हैं। और बोलो। हाँ, उसी विनाश के काल में, विकराल काल में विजयी रतन प्रसिद्ध होंगे, वही इष्ट देव देवी बनकर आत्माओं को महसूस कराएंगे। आपको याद हो बाबा की मुरलियां हैं, जय जयकार होगी कि हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे सहारे दाता आ गए, हमारे मुक्ति दाता आ गए। तो विजयी रतन उनको इस स्वरूप में दिखाई देंगे। जैसे हमें कौन दिखाई देगा? हमें बाबा दिखाई देता रहेगा, आभास होता रहेगा, वो हमारे साथ हैं और हमारे भक्तों को हम दिखाई देते रहेंगे। दूसरी मुरली थी स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी, सत्र नहीं, छत्रधारी, छत्रधारी, छत्र माना ताज। और जहां स्वदर्शन चक्र नहीं है वहां क्या? बहुत सारे चक्र, सिर पर क्या होगा, बोझ होगा। तो इस बार हम बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। मैं अकाल तख्त नशीन मास्टर महाकाल हूँ। शब्द बड़ा खतरनाक सा है, महाकाल। इस नाम से डरते हैं ना लोग, महाकाल महाकाली, और हम हो गए मास्टर महाकाल। तो विनाश का कोई डर नहीं होगा। विनाश की अंतिम स्थिति का बाबा ने वर्णन कर दिया। क्वेश्चन की बात थी, याद करो, नो क्वेश्चन क्या था? केवल एक ही बात याद रहे, घर जाना है, और इसके साथ और कुछ जोड़ लें, सब कुछ छोड़, सबको, हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रियजन, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के प्रिय बच्चे, माँ बाप, सबके घर जाने का समय आ गया है। इसलिए कहीं भी संकल्प उलझे हुए नहीं। कौन सी शक्ति चाहिए इसके लिए? समेटने की। संकल्पों को समेट लिया। और संकल्पों को तुरंत कौन समेट सकते हैं? सेकंड में फुल स्टॉप, और मैं और मेरे से मुक्त आत्माएं। मेरा कुछ है ही नहीं जो विनाश होगा। समस्याएं तो यही होगी ना, मेरा ये नष्ट हो गया, मैंने ये कमा के बनाया था, सब चला गया, माताओं ने जो अंदर छुपा के रखा हुआ माल, जेवर अपनी पेटियों के भी अंदर एक छोटी पेटी में, वो सब चला गया, किसी को चोर ले गए हैं, किसी को पानी बहा ले गया, कुछ अग्नि की भेंट चढ़ गया, ये हो गया, क्या हो गया, बाबा ने मदद नहीं की, ये सब संकल्प समेटने होंगे। बाबा की मदद ये नहीं होगी कि हमारा मिट्टी का घर बचा रहेगा। बाबा की मदद क्या होगी? मिट्टी का घर तुड़वा के सोने का महल देना। सबको हमें ऐसा ज्ञान स्वरूप रहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरा परिवार चला गया, बाबा ने मदद नहीं की, मैंने बाबा के लिए इतना सब कुछ किया था, लेकिन मुक्ति सबको देनी है। उस टाइम याद रखना पड़ेगा, सबको मुक्त करके घर वापस ले चलना है, बाबा को भी और साथ में हमें भी। हम भी तो मदद करेंगे ना आत्माओं को मुक्त होने में। देखो, आत्माएं उलझ जाएंगी, फंस जाएंगी, अटक जाएंगी, उलझ जाएंगी, हम वाइब्रेशंस देकर उन्हें छुड़ाएंगे, बाबा साथ ले जाएगा। तो हम सभी इस फाइनल स्थिति की तैयारी करेंगे। तब तो बाबा हमें उमंग भर रहा था, अब वो समय आने वाला है। हमारे देखते देखते ही हमें इन सब परिस्थितियों से पार करना पड़ेगा। एक बात और, बहुत सुंदर थी आज वो बात, एक दो बार पहले भी आई है, विनाश काल में टचिंग किसको होंगी? जो संपूर्ण वॉइसलेस होंगे। मिलिट्री में वायरलेस सेट का ही प्रयोग किया जाता, अब भी शायद उसी का होता है, मोबाइल फोन का नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन को तो तुरंत कैच कर सकते हैं ना दुश्मन, तो इसका वायरलेस सेट का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी है, ऊपर गुरु शिखर है ना, वहाँ पर लगा हुआ। तो एक बार हम लोग गए तो एक पुलिस वाला हमें पहचानता था, उसने हमें सारा दिखाया कैसे सेट काम करते हैं, कैसे दुश्मन की बातों को भी हम कैच कर सकते हैं, वो हमारी कैच कर सकते हैं। इससे बचना होता है, इसको बचाना होता है, रडार लगे हुए हैं। तो ये वायरलेस सेट जो मैसेज पहुंचेगा ही, बीच में रुकेगा नहीं, वॉइसलेस आत्माएं। एक शब्द और था इसके साथ जो मैंने भी आज पहली बार नोट किया, वॉइसलेस तो पहले भी सुना था, हाँ, पाप रहित। वैसे तो वॉइसलेस में पाप रहित आ गया, लेकिन इसको प्लस में अंडरलाइन करना है, वॉइसलेस प्लस पाप रहित आत्माएं बाबा की हर बात को सहज कैच कर सकेंगी। अब हमें क्या करना है? एक स्वमान हमारा ये, मैं अकाल मूर्त मास्टर महाकाल हूँ। जो अकाल मूर्त होंगे वही मास्टर महाकाल होंगे। अकाल मूर्त माना मृत्यु का कोई भय नहीं, दूसरों की मृत्यु देखकर भी साक्षी भाव। बाबा के शब्द हैं, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा ये मरा, शहर नष्ट हो गया ये नष्ट हो गया, और तुम क्या कहेंगे? मुक्ति धाम में गया, डोंट वरी, वहीं पहुंच गया जहां जाना था। ये हमें स्मृतियों में रखना होगा। तो दूसरा स्वमान हमारा रहेगा मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे बढ़ाते चलना है, हम मूल्यों में इसकी बहुत बातें सुनते रहते हैं सदा ही। अव्यक्त मूल्यों का ये मुख्य स्वमान बाबा हमें देते हैं। कैसे इसको बढ़ाएंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्यों? माताएं बताएंगी बीच वाली, क्यों बोलो? और बोलो, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, और कुछ बोलो। हम सबके साथ एक दूसरी बात भी तो हुई, हम यहाँ क्लास में खूब चर्चा करते हैं, भाई बताओ, जिससे हमें ये नशा चढ़े और ये स्थिति हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति, नशा और फिर स्थिति। स्थिति ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। पहले स्मृति रखनी है, बहुत याद करना है, इसका नशा चढ़ जाए, इससे शक्तिशाली स्थिति बनेगी, निर्भय स्थिति, निश्चिंत स्थिति, साक्षी स्थिति। तो क्यों है मास्टर सर्वशक्तिमान? बाबा से हमें सर्वशक्तियां मिल गई हैं। देखो, सर्वशक्तिमान के बच्चे तो सब हैं, और तो जो ज्ञानी नहीं है वो भी हैं, लेकिन हमारे साथ इम्पोर्टेंट बात हुई, इसको सभी रियलाइज करें, स्वीकार करें, इस पर चिंतन किया करें कि हम बाबा की शक्तियों से संपन्न हैं। नशा हो जाए, हमारे साथ भगवान की शक्तियां हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी, जागृत रहेंगी, ऑटोमेटिकली काम करेंगी। हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें समेटना है या हमें सामना करना है या हमें सहन करना है। ऑटोमेटिकली हम सहज भाव से सहन करेंगे, सहज भाव से सामना करेंगे। जिन चीजों को समेट लेना है वो ऑटोमेटिकली समेटी जाएंगी, हमने संकल्प हो जाएंगे। तो सभी इस फीलिंग को बहुत बढ़ाएंगे। कौन सी फीलिंग? मेरे साथ बाबा की समस्त शक्तियां हैं। मैं आपको लौकिक वालों का उदाहरण दूं, कुछ लोग तंत्र मंत्र से कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, कुछ छोटी शक्तियां होती हैं, बहुत छोटी हैं। अगर हम अपनी शक्तियों से भेंट करें तो दे आर नथिंग, बिल्कुल नथिंग। लेकिन उनको नशा रहता है, मेरे पास शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उल्टा काम, इसको मार सकता हूँ, उसको कष्ट दे सकता हूँ। आजकल तांत्रिक शक्तियां कष्ट देने के लिए ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, सुख देने के लिए बहुत कम। हमारे पास, बोलो फिर से, हमारे पास सर्वशक्तिवान की शक्तियां हैं। अपने को संकल्प देंगे, इसलिए मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूं। गुड फीलिंग दें अपने को, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। ये दोनों संकल्प हमें मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ देने हैं। तो हमारे चार संकल्प हो गए, इनको हम बहुत अच्छे अभ्यास में लाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं, मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। तो ये चीजें हमें बहुत सुंदर अनुभव कराएंगी, बहुत सुंदर। हम लोगों से कराते रहते हैं ये सब बातें, बहुत अच्छे अनुभव जहाँ तहाँ सबको होते हैं इस एक स्वमन से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और मैं ये जानता हूँ जिनसे हम कराते हैं ना, वो भोली माताएं, उनको पता भी नहीं होता मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है, बस सुना है तो चलो मैं याद कर लेती हूँ 108 बार। वो केवल याद करते हैं तो भी वंडरफुल बातें हो जाती हैं। और अगर हम इस नशे में आ जाएं केवल 21 बार तो हमें संकल्पों की सिद्धि का वरदान प्राप्त हो जाए, बहुत सुंदर अनुभूति हो जाए, सारे संकल्प इससे समाप्त होने लगे। अविनाश काल में प्रकृति सबसे अधिक कष्टकारी होगी, भारत में विशेष, और देशों का विनाश विश्व युद्ध से, गृह युद्धों से बहुत हो जाएगा। भारत में गृह युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप बहुत होंगे। प्राकृतिक प्रकोप के दोनों अर्थ हैं कि पानी बहुत आ जाए लेकिन पानी हो भी नहीं, पीने को भी ना हो, आग बरसने लगे तो घर में खाना पकाने को आग न हो, भूकंप होने लगे सब कुछ अंदर चला जाए, आप कल्पना करो सड़कें और रेल लाइन टूट जाए जहां तहां, क्या हाल होगा संसार का, भारत का क्या हाल होगा। ट्रांसपोर्टेशन फेल, सारे ट्रक और ट्रेन खड़ी हैं, माल भरा हुआ है कहीं नहीं जाएगा, सप्लाई लाइन ठप, सब खाली, हाँ सब कुछ खाली, बीमार लोग हैं, डॉक्टर बैठे हैं, दवाई नहीं, अनाज के ट्रक भरे खड़े हैं, लोग लूट लेंगे फिर आ नहीं पाएंगे। ऐसे में हम सभी को प्रकृति मदद करे, क्या करना है, अटेंशन देंगे इस बात पर सभी, प्रकृति हमें मदद करे, हम प्रकृति के मालिक हैं, अपने मालिकों की प्रकृति सेवा करे, कष्ट न दे। हमने यद्यपि उसे कष्ट पहुंचाया है पर जैसे माँ, प्रकृति माँ भी है, जैसे बच्चे माँ को कष्ट दें, माँ फिर भी माँ होती है, प्रकृति को मनुष्य ने बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन अगर हम प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमें विनाश काल में सुख देगी, सब चीजें प्रदान करेगी, हमें कष्ट नहीं देगी। तो क्या करना है सभी को, क्या करना है, रोज 10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने की सेवा करनी है। सब अपने से बात करेंगे, अगर हम चाहते हैं विनाश काल में प्रकृति हमारी सच्ची साथी बन जाए, लोगों को पीने को पानी ना हो, हमारी टंकियां भरी हो, लोगों को सब्जी न मिल रही हो, हमारे फ्रिज भरे हो, चाहती है माताएं ऐसा, तो प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। लोग रोग में कराह रहे हो और प्रकृति, हमारा शरीर रोग मुक्त हो, ये भी प्रकृति से होगा ना, है लाइट नहीं रहेगा, फ्रिज नहीं तो और कहीं सब्जियां रख लेंगे, ये कह रहे लाइट नहीं होगी तो फ्रिज में सब्जी भरी हुई भी तो खराब हो जाएंगी, सोचा तो इन्होंने ठीक, लेकिन आपको लाइट मिलती रहेगी अगर मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रकृति के मालिक, वाइसलेस स्थिति, अगर ये सब होगा तो कष्ट ही नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो तीसरा स्वमान हम लेंगे, मैं प्रकृति की मालिक हूँ, और प्रकृति को रोज 10 मिनट सकाश देंगे। सकाश देने के दो तरीके अपनाएंगे। सबको 10 मिनट निकालना है, चाहे आप टाइम फिक्स कर लो उसका, सवेरे शाम। प्रकृति तो सदा ही है, उसके लिए समय की कोई बंधन नहीं। दोपहर, सवेरे 9 बजे, मुरली के बाद, जैसे चाहें। दो तरीके अपनाएंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, अपने को इस स्वरूप में स्थित करें। कमल आसन पर विराजमान हूँ। ठीक है, माताओं की समझ में आ रहा है? कुछ माताएं आश्चर्यवत देख रही हैं कि पता नहीं क्या बताया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ माताओं के चेहरे, कुछ को लग रहा है ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, बाबा ने तो कभी बताया नहीं। वो तो कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाकी ये बातें कहाँ से आ गई? आ गई। माताएं सब ध्यान दें, ये सब मुरलियों में ही हैं। तो दो स्वमान से पवित्रता के फरिश्ते स्वरूप में स्थित हों, और साथ में अभ्यास करेंगे, मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। पहले ये अभ्यास कर लेंगे, बाबा से तो लेंगे ही, पर पहले इस स्वरूप में स्थित कर दें, मेरे चारों ओर प्रकृति के तत्व हैं और ये पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति में समा रहे हैं। फिर ऊपर बाबा को देखो, पवित्रता के सागर, उसके स्वरूप को बहुत अच्छी तरह क्लियर देखेंगे। ये ज्वालामुखी योग हो जाएगा, बिल्कुल वही दिखाई दे रहा हो, जैसे उसकी पवित्र किरणें सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। ब्रह्मलोक बहुत बड़ा है ना, छोटा सा नहीं जितना चित्र में दिखाया जाता है, अनंत, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। अब वो पवित्र किरणें नीचे मुझे आ रही हैं और मुझसे फैल रही हैं। एक अभ्यास, बहुत आनंद आएगा। दूसरा इसी का स्वरूप, मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति का मालिक, आकाश में हूँ। बहुत गुड फीलिंग, फील करो मैं यहाँ नहीं वहाँ हूँ। फरिश्ता बन के जाए वो भी छोड़ दो, मैं वहाँ हूँ आकाश में, बादलों के बीच, जैसे चारों ओर मेरे बादल हैं सफेद, मैं फरिश्ता उसके बीच में हूँ, प्रकृति का मालिक। अब यहाँ से हम प्रकृति को इस तरह सकाश देंगे कि मुझसे पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं, बाबा की मेरे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे फाउंटेन पड़ रहा है, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, आकाश वायु अग्नि तीन तत्व मेरे चारों ओर हैं तो पांचों, पर हम तीनों को देंगे पहले। अग्नि को जा रही, अग्नि है ना ऊपर, सूरज की गर्मी सारे में फैली हुई है, कण कण अग्नि से भरा हुआ है, उसको वाइब्रेशंस जा रहे हैं। आकाश है, हवा है, संकल्प कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में विराजमान, हवा मुझे टच करके जा रही है, पवित्र होकर सारे संसार में फैल रही है। बहुत आनंद आएगा। ऊपर से हवा आ रही है, मुझे टच करके नीचे फैल रही है, दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, मुझे टच करके चारों ओर फैल रही है। फिर वहीं से देखेंगे ग्लोब, ऊपर से देखेंगे नीचे धरती का गोला, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस गोले में समा रही हैं। फिर वहीं से देखेंगे दूर दूर तक फैला हुआ सागर, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। अलग अलग इस तरह सकाश देंगे। फिर एक और अभ्यास कर लेंगे, मेरे सामने सारे 9 ग्रह खड़े हैं देव स्वरूप में, उन्हें ये पवित्र किरणें जा रही हैं। उनसे बातें करो, तुम सब मेरे फ्रेंड हो, मित्रवत हो। अब तुम्हें संसार को बहुत सुख देना है, गुड एनर्जी देनी है। इन सभी ग्रहों से एनर्जी आती है धरती पर, मनुष्यों को प्रभावित करती है। संकल्प दे दे इन्हें, तुम्हें भी सबको सुख देना है, गुड एनर्जी देनी है, तुम पवित्र हो। ऐसे प्रकृति को सकाश देंगे, रोज प्रकृति की 10 मिनट ये सेवा करेंगे। 10 मिनट फट से बीत जाएंगे, इसे ज्यादा बीत सकते हैं। इस तरह की विधि अपनाने से, अगर ऐसा ही सोचेंगे मुझे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को देने हैं, तो मन बुद्धि कहीं और भटक सकती है। पर हम इस तरह एक विजन बनाएंगे और संपूर्ण प्रकृति की सेवा करेंगे। पसंद है? करेंगे? बोलो, कौन कौन टाइम फिक्स करेंगे आज ही? इससे हमें प्रकृति का बहुत सहयोग मिलेगा, शरीर का सहयोग मिलेगा। आप इसको अनुभव में लाएं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब हमें मास्टर सर्वशक्तिमान, प्रकृति को सकाश देना, ये दो चीज। अब मैं आपके सामने एक तीसरी सुंदर चीज रखता हूँ, उस पे आप सभी को और काम करना है। बाबा के आने में 25 दिन रह गए हैं। बाबा के सामने कैसा चेहरा लेके जाना है, सोच लो कैसा लेके जाना है। एक महावाक्य मैं आपको बाबा का याद दिलाता हूँ। एक बाप के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। याद आया? यह अव्यक्त महावाक्य है, एक मुरली थी इस पर। एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। दूसरी बात बाबा ने कही है शुरू में, आपको ख्याल हो, जो आत्मभिमानी है वही संपूर्ण ज्ञानी है। अब हम पहली बात पर प्रैक्टिस करेंगे जीवन में। हम इसका लिंक जोड़ें कि संपूर्ण ज्ञान और एक के प्यार में मगन होना, दोनों का क्या लिंक है? अगर हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अगर हमें समय की पहचान नहीं है, तो क्या क्या होगा? हमारा प्यार बढ़ता रहेगा, कभी व्यक्तियों की ओर और कभी वस्तुओं की ओर, पदार्थों की ओर। पदार्थों का प्यार भी कम नहीं होता, वो भी हमारी बुद्धि को नीचे ले आता है। पदार्थ कोई भी हो सकते हैं, हमारे पास साधन भी हो सकते हैं। कोई चीज हमारे पास यज्ञ सेवा के लिए है, उसमें हमारा बहुत प्यार है, प्यार तो होना भी चाहिए, उसकी हमें संभाल करनी है। लेकिन वो प्यार हमें ऊपर के प्यार से नीचे ला रहा हो तो विघन हो गया। मान लो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, काम आ रही है, सेवाओं में पीस ऑफ माइंड चैनल में यूज हो रहा है, लेकिन हम उसमें उलझ गए। हमारे पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, 2.5 लाख का है। मैं एक लाया, उसने मुझे बताया मेरा लैपटॉप 2.5 लाख का है। तो क्या होगा 2.5 लाख के लैपटॉप से? प्यार तो बहुत रहेगा, अटैचमेंट हो जाएगा। कोई 15,000 का भी यूज किया जा सकता है, जिसका रहे हुए खो भी जाए तो कोई चिंता नहीं, चलो खो गया। गिर के टूट भी जाए, पानी में गिर जाए तो भी परेशानी तो नहीं होगी ना। अब 2.5 लाख का, उस पर अटेंशन भी बहुत देना पड़ेगा, काम तो उससे बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि योग उसमें बहुत जाएगा तो हमारा प्यार ऊपर से माइनस होगा उतना ही। वस्तुओं में, चाहे किसी की अपनी चप्पलों में ही बहुत प्यार है, छोटी सी बात। क्यों अर्जुन भाई, ऊपर का प्यार माइनस होगा या नहीं? होगा। किसी भी शरीर की चीज में बहुत प्यार है, उतना ही बाबा का प्यार में कमी हो जाएगी। तो हम सभी इस पे ध्यान देंगे। हमें वॉइसलेस होना है, कौन बाबा के प्यार में मगन हो सकते हैं? बोलो। जो कोई ये बात है, फिलोसॉफिकल बात, जो जितना दहेज से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे, वो उतने ही विश्व को प्यारे। ये देखो भगवान वाच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। अगर हमें हम कोई आत्मा कहे कि हमें प्यार नहीं मिलता, लोग हमें प्यार की नजर से नहीं देखते, तो क्या अभ्यास करना चाहिए? दहेज से न्यारे होने का। ऑटोमेटिकली हम सबके प्यार को अट्रैक्ट करने लगेंगे। बाबा का तो बहुत सुंदर महावाक्य है, जब तुम्हारी दृष्टि केवल आत्मा पर ही जाएगी, हर शरीर में जो आत्मा है, तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से आत्मा पर जाएगी, तब सारे संसार की दृष्टि तुम चमकते हुए सितारों पर आएगी। तो ये बहुत बड़े फिलोसॉफिकल यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इनको हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना है। तो बाबा के प्यार में मगन होने के लिए और कहीं प्यार नहीं, और देह से न्यारापन तो बाबा ही खींचेगा। जैसे आत्मा देह से निकल के ऊपर की ओर उड़ेगी, ऐसे ही हम देह से न्यारे होंगे तो आकर्षण ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं। संसार की सुंदर से सुंदर, आवश्यक से आवश्यक, बहुत यूजफुल चीज भी हमें हल्की लगेगी। ठीक है, यूज है, यूज कर रहे हैं, हमारा संपूर्ण अट्रैक्शन ऊपर की ओर चला जाएगा। तो सभी को एक काम करना है, अब जो भी आप में से कर सके, और वो काम है एक छोटी सी कमेंट्री सबको लिखनी है, बाबा के प्यार में स्वयं को मग्न करने वाली कमेंट्री, संकल्प। सब लिखेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं, और ये इस तरह करेंगे। देखो अब सुन ले आप, और सभी लिखेंगे, एक दिन में जरूरी नहीं लिख लें, आप 25 दिन में लिखो बाबा के आने तक। जो बहुत अच्छा लिख ले वो मुझे भी दे दें, मुझे काम आएगी वो। जरा ऐसे चिंतन करेंगे, अपने से बात करेंगे, चलें हम मग्न होते हैं उसके प्यार में जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। हम मग्न हो जाते हैं उसकी याद में जिसने हमें जीवन जीना सिखाया है। हम खो जाते हैं उसके प्यार में जो हमें बहुत प्यार करता है। ऐसे शुरू करेंगे, फिर जैसे हम बाबा से बात करेंगे, आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, अब आपके सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने हमारी भटकन दूर की, आपने हमें अपना सत्य ज्ञान दिया, श्रेष्ठ योग सिखाया, सुखों का द्वार खोला, सोया हुआ भाग्य जगाया। अब हम चलते हैं आपके प्यार में संपूर्ण मग्न। तो बहुत देर तक मग्न अवस्था बन जाएगी, ये मग्न अवस्था ही ज्वालामुखी योग है, जिसमें हमारे सभी संकल्प शांत हो गए, खो गए हम, तो हरेक के पास नई नई बातें हो जाएंगी। जो मैं आपको बताऊंगा वही नहीं, हरेक के अपने अपने भी हैं। किसी आत्मा ने जीवन में बहुत दुख उठाया है, बाबा का बनते ही उसके दुख समाप्त हो गए, तो जब वो आत्मा दिल से कहेगी, बाबा आपने तो मेरे सिर से दुखों का पहाड़ हटा दिया, कितने प्यारे हो आप, तो उसे बाबा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। कोई सत्य के लिए भटक रहे थे, इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, कहीं धोखा मिला, कहीं टक्करें मिली, कहीं स्वार्थ दिखाई दिया, ज्ञान बिल्कुल नहीं। ऐसे में वो आत्मा जब बाबा से बात करेगी, आपने मुझे सत्य ज्ञान देकर मंजिल दिखाई, हम भटक भटक कर थक गए थे, आपने एक सेकंड में हमें मार्ग दे दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार में मन खो जाएगा, शुक्रिया भी करेंगे, उससे क्या प्राप्त हुआ है वो भी सोचेंगे और ऐसे संकल्प भी करेंगे, चलो खो जाएं उसके प्यार में, उसकी याद में, सब कुछ भूल जाएं, केवल वही दिखाई दे जिसने हमें गति सदगति का मार्ग दिया। मगन हो जाएं कुछ देर, सभी ये प्रैक्टिस करेंगे रोज एक बार, सवेरे शाम कभी भी आप कर लें, फिर उसको लिख भी लेना ताकि वो सदा अपने पास रहे। एक बार रोज अपने को मग्न करने का अनुभव सुंदर संकल्पों के द्वारा। पसंद है? अब मैं पूछना चाहूंगा, सबको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, जो ये काम लिखने का, मगन होने का सब करेंगे, लिखने का जो काम करना चाहेंगे वो हाथ उठाएं। ठीक है, बहुत है, आप लिखें और मुझे भी दे दें, बहुत अच्छा। रोज 25 दिन हो गए ना, चाहे आप रोज केवल 5 लाइन लिखेंगे, फिर उनको चिंतन करते हुए मगन होंगे, चाहे वो लाइन आप रिपीट कर लें, नो प्रॉब्लम, जरूर नहीं, नए नए विचार ही आपको आए। कभी ऐसा होता है कि कुछ थोड़े से विचार कई दिन तक हमें आनंदित रखते हैं, तो जब तक वो विचार हमें मग्न कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना, जब देखो वो विचार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य के ब्रेन की अपनी अपनी स्थिति है, सुंदर से सुंदर विचार भी कुछ समय के बाद इफेक्ट नहीं डालते, तब उसको चेंज कर देना। ये काम सभी को करना है बाबा के आने तक। अब मैं थोड़ी सी, 5 मिनट बाकी हैं। वाइसलेस और पाप रहित, किसे कहेंगे पाप रहित स्थिति? बहुत सुंदर शब्द है ये, पाप रहित स्थिति, चित्त में कोई पाप नहीं, मन में कोई पाप का संकल्प नहीं, किसी को कष्ट देने की कोई भावना नहीं, किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं, ठीक है ना? किसी के लिए मन में भी निगेटिव विचारधारा नहीं, चित्त बिल्कुल निर्मल, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, हम इस विश्व परिवार के बड़े हैं, पूर्वज हैं, हमसे सभी को गुड वाइब्रेशंस का फ्लो जाता रहे, बिल्कुल पाप रहित। इसी का दूसरा स्वरूप है दैहिक आकर्षण से रहित स्थिति। दैहिक आकर्षण बहुत पाप है ना, सूक्ष्म पाप है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे अभी मिला, ऊपर शिविर चल रहा है, ज्ञान भी उसने ले लिया है कुछ समय से, कहा मेरा ब्रेन ब्लॉक होता है। छोटे से मैं थोड़े में सुना देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, 4 डिग्री है उसके पास, बहुत अच्छी अच्छी, मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ब्रेन ब्लॉक, घर में बैठे बैठे ब्रेन ब्लॉक, मुझे कोई समाधान चाहिए। उसके चेहरे पर आया हुआ था ब्रेन की वीकनेस, चेहरे पर सुख नहीं जीवन में। तो मैंने उससे बहुत सारी चीजें पूछी, मेरे कमरे में आ गया, तो आखिर मैंने जब उससे पूछा सवेरे कितने बजे उठते हो, कहा 7 बजे। कहा वाह, तुम तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए, 7 बजे क्यों? कहा रात को 12-1 बजे सोता हूँ। मैंने कहा टीचर होके 12-1 बजे सोने की क्या बात है? कि नहीं, इंटरनेट देखने की आदत पड़ गई, खोल लेता हूँ फिल्म। अब वो अपने पत्ते खोलने लगा, कैसी फिल्म देखते हो? बता दिया, गंदी देख लेता हूँ। पाप हो गया या नहीं? देखो, इस पाप का परिणाम उसके ब्रेन को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि सोते समय अगर कोई व्यक्ति टीवी देखता रहता है, सोते समय अगर कोई गंदी फिल्में देखता है, वो पाप रहित नहीं हो सकता, उसके न्यूनतम प्रधान, उसका ब्रेन ब्लॉक्ड, उसके विचार दूषित, उसको ईश्वरीय सुख नहीं मिल सकता। कहा मैं नहीं चाहता देखूं, पर जैसे वो टाइम होता है ना 11 बजते हैं, बस खुलता ही है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, क्या करूं। जैसे शराबियों को होता है ना शाम के 6 बजे अब कदम मधुशाला की ओर, रुकते नहीं, ये एडिक्शन है ना, व्यसन है। तो मैंने उसको 2-4 विधि सजेस्ट की, ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा लैपटॉप को आज से कुएं में डाल देना, बेचना भी नहीं, ताकि लगे आपको मैंने कुछ छोड़ा है, बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा ना, तो फिर दूसरा भी खरीद सकते हैं। मैंने कहा इसको कुआ है ना पास में, कहा है जाते ही फेंक देना, ये तुम्हारे लिए शत्रु बनकर आया है। विज्ञान का विकास बहुत विनाशकारी भी है, क्योंकि मनुष्य निगेटिव हो गया है ना, तो वो हर चीज का निगेटिव उपयोग कर रहा है। इसमें विज्ञान का दोष नहीं, विज्ञान ने तो सुंदर चीजें दी हैं। देखो हम भी बाबा के बच्चे लैपटॉप का प्रयोग सेवाओं में कर रहे हैं ना, क्लासेस सुनने में करते हैं लोग, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करता है उसके लिए ये विनाशकारी, ये पाप है। हमें पाप रहित होना है, और ऐसा लक्ष्य रख लें सभी विकारों पर एक बार अपने को देखते हुए गहन दृष्टि डालेंगे। काम कांश, क्रोध कांश, लोभ कांश, मोह का, अहंकार का अंश कितना शेष है याद रखना है। विनाश काल में क्योंकि पांचों विकारों का फोर्स होगा, इसलिए जिसमें जिस विकार का अंश होगा वो विकार वृद्धि को पालेगा। सभी कुमार कुमारियां विशेष ध्यान दें, हमें फुल पास होना है। जो वातावरण में दूषितता आएगी विनाश काल में विकारों की, हमें उसको न्यूट्रल करना होगा, न कि उसके इफेक्ट में आना होगा। तो सभी चेक करें। देखो लोभ का भी अंश होगा ना, तो लोभ उस जगह हमें ले जाएगा जहां विनाशकारी स्थिति होगी। लोभ हमें समय पर बाबा को बुला देगा और हम कहीं भी चक्रव्यूह में उलझ जाएंगे। अहंकार, क्रोध सब कष्टदायक होंगे, इसलिए सभी बाबा की इस बात पर बहुत ध्यान दें। मैं तो आज सोच रहा था कितने भाग्यशाली हैं हम कि भगवान हमें पढ़ाता है और भविष्य का पूरा चित्र बता देता है, ये होने जा रहा है। एग्जाम में पहले से ही कोई प्रोफेसर क्वेश्चंस या पेपर आउट नहीं करता, लेकिन हमारा प्रोफेसर कैसा है, पेपर आउट कर दिया, तारीख नहीं बताता। हाँ ठीक कहा इन्होंने, वो डेट नहीं बताता, अचानक होगा। हाँ वहाँ तारीख और पेपर का समय फिक्स होता है, यहाँ बाबा पेपर आउट कर दिया पर डेट नहीं बताई, उसके लिए हमें छोड़ दिया मुक्त। अब ये तुम जज करना, पेपर सेकंड का होगा, सेकंड माना कुछ क्षणों में पेपर आ जाएगा। हमारी स्थिति बिगड़ गई तो वो समय ऐसा होगा चारों निगेटिविटी का जैसे सागर लहरा रहा होगा, तो एक बार बिगड़ी हुई स्थिति जल्दी ठीक नहीं होगी, समय लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे, दिन निकल जाएंगे, उसमें सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो सभी बहुत अच्छी तरह इन स्वमानों का अभ्यास करेंगे, प्यार में मगन होने का बहुत सुंदर अनुभव, प्रकृति को सकाश देना, और बाबा ने जो जो हमें होमवर्क दिए थे व्यर्थ से मुक्त, सभी का ध्यान है ना, व्यर्थ से मुक्त। अब समय आ रहा है हम स्वयं को बिल्कुल मुक्त करेंगे। चलें अब हम बाबा के प्यार में मग्न होंगे। केवल एक ही दिखाई दे महाज्योति, वो जिसने हमारे जीवन को प्रकाशित किया है, जिसने हमारे जन्म जन्म के अंधकार को समाप्त कर दिया है, जिसने आकर शक्तियां और वरदान हमें प्रदान किए हैं, जो हमारे जीवन का सच्चा सहारा बन गया है। हम इस संसार की यात्रा में अकेले थे, उसने आकर हमें सच्चा साथ दिया है। खो जाएं उसकी याद में, केवल वही दिखाई दे।